विल प्रे
प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके पास में आते हैं पिता। जैसे हम आपके वचन में जाते हैं प्रभु, हमसे बात करें पवित्र आत्मा। हमारे हृदय की जरूरतों को आप जानते हैं पिता। हमारी जरूरत के स्थान पर उस वचन को भेजिए जो हमें प्रोत्साहन दे सके, हमें करेक्ट कर सके प्रभु। हम आपके समान और भी बढ़ना चाहते हैं प्रभु, आपके वचन से हमसे बात करें। वो हम्बल हृदय दीजिए पिता, जो आपके वचन को ग्रहण कर सके। यीशु के नाम से मांगते हैं।
Many times, something which came to my mind was, many times we do not seek things which we do not value it.
और एक बार कई बार मेरे मन में विचार आया कि जिस चीजों का मूल्य करते उस चीजों को हम नहीं खोजते हैं।
For example, if we do not seek after the things of God,
मान के देखिए कि अगर हम परमेश्वर की जो बातें हैं उसकी चीजों की खोज नहीं करते हैं,
that means I have not understood why it is worth.
इसका मतलब यह है कि मैंने उसके मूल्य को नहीं जान लिया है।
Jesus said that kingdom of heaven is like a man who saw a great treasure.
और यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य एक व्यक्ति के लिए इस प्रकार था कि जिसने एक बहुत बड़ी धन को, संपत्ति को देख लिया।
एंड वेन ही फाउंड इट For the joy of that, he sold everything he had.
और जब उसने उस चीज को देख जान लिया, तब उस आनंद के खातिर उसने अपना सब कुछ बेच दिया।
So it is important for me to look at it. My eyes should be open to see that.
और मेरी आंखें खुली होनी चाहिए उस मूल्य को, उसकी योग्यता को जानने के लिए।
If I don't see it, I cannot give everything for that.
और अगर मैं उसको नहीं देख पाता, तो उसके लिए मैं सब कुछ नहीं दे पाऊंगा।
So that was coming to my mind.
और ये मेरे मन में आ रहा था।
When Jesus came to earth,
जब यीशु मसीह धरती पर आया,
it was not just to die for my sins.
और वो केवल मेरे पापों के लिए मरने नहीं आया।
Jesus came to offer a higher life for me.
लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया कि वो मुझे उच्च स्तर का जीवन दे सके।
If I do not understand that,
अगर मैं इसे नहीं समझ पाता,
and I just am satisfied with what I am now, right now,
और उसके बजाय अभी मेरे पास जो भी फिलहाल मेरे पास है, उससे मैं संतुष्ट रहता हूँ,
then I will not get that life which God wants me to have.
तब परमेश्वर जो जीवन देना चाहता है, वो जीवन मुझे नहीं प्राप्त होगा।
In Matthew chapter 5,
मत्ती 5 अध्याय,
Jesus said in verse 17 and 18,
17 और 18 वचन में यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा,
Do not think I came to abolish the law or the prophets. I did not come to abolish but to fulfill. For truly I say unto you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or stroke shall pass from the law until all is accomplished.
यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था में से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा।
So Jesus came to fulfill the law.
यीशु मसीह संसार में व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया।
Till Jesus came, nobody could fulfill the law in their hearts.
और यीशु मसीह आने से पहले कोई भी व्यक्ति अपने हृदय में व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाता था।
What they could do is externally do the conditions of the law.
और वो क्या कर पाते थे, बाहरी तौर में परमेश्वर की जो conditions है उसको वो पूरा कर पाते थे।
But in their hearts, nobody could really keep the law.
लेकिन उनके हृदय में कोई भी व्यक्ति व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकता था।
That is why Jesus said that I came to fulfill the law.
इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं इसलिए आया कि व्यवस्था को पूरा करूं।
It is not just living external lives.
और ये केवल बाहरी जीवन जीना उतना ही नहीं है।
It is a life which comes from within.
लेकिन ये ऐसा जीवन जो भीतर से बहता है।
So that is what God wants us to desire more and more.
और यही परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे जीवन की चाहत और ज्यादा करें।
If I do not see that, I will not desire it.
अगर मैं इस चीज को नहीं देखूंगा तो इसकी चाहत भी नहीं करूंगा।
That is why Jesus said, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness.
इसलिए यीशु ने कहा कि धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं।
So if I do not see it, I cannot hunger and thirst for it.
और यदि मैं उसको नहीं देख पाता तो उसके लिए भूख और प्यास में नहीं रख पाता।
Jesus did not say that those who are righteous और those who try to be righteous are blessed.
और यीशु मसीह ने इस प्रकार नहीं किया, जो धर्मी और धर्मी बनना चाहते वे धन्य, ऐसा नहीं।
मेहनत करते
वो धर्मी बनने के लिए मेहनत करते वैसे लोग नहीं।
But those who hunger and thirst for righteousness.
लेकिन जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं।
That means I do not have that righteousness in me.
इसका मतलब कि मुझ में वो धार्मिकता नहीं है।
I know that.
मैं जानता हूँ इसे।
Only then I can hunger and thirst for it.
और जब मैं इसे जान लूंगा तभी मैं उसके लिए भूखा और प्यासा रहूंगा।
If I feel that I have that righteousness,
यदि मैं ऐसा मानूं कि मेरे अंदर वो धार्मिकता पहले से ही है,
then I cannot hunger and thirst for it.
तो मैं उसके लिए भूखा और प्यासा नहीं रहूंगा।
For example, Jesus said in Matthew 5,
मत्ती 5 में यीशु ने कहा
फ्रॉम वर्स 21
21 वचन से
दैट इट वाज रिटन दैट यू शैल नॉट मर्डर
और वहां लिखा है कि तुम्हें हत्या नहीं करना है
बट आई सेन टू यू दैट यू शुड नॉट बी एंग्री
लेकिन मैं तुमसे कहता हूं जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा आपको क्रोधित नहीं होना है
सो in 21 it says you should not murder
21 वचन में लिखा है कि हत्या नहीं करना
but jesus said i should not be angry
लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मुझे क्रोधित भी नहीं होना है
so in the similar manner like in the old covenant it was that you should not murder
और उसी प्रकार जैसे पुराने नियम के अंदर हत्या करने के समान जैसे था
in the same manner jesus saying that you do not get angry
और उसी समान नए नियम के अंदर यीशु मसीह कहता है कि अब तुम्हें क्रोध नहीं करना है
that means if a person compare a person who says that I never murder
और ये इस प्रकार कहना है कि एक व्यक्ति के समान अपनी तुलना करना कि मैंने कभी भी कोई हत्या नहीं की है
फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज सेइंग दैट आई केप्ट द लॉ आई डिड नॉट मर्डर एनीवन
और अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैंने सारी व्यवस्था को पूरा किया मैंने कभी हत्या नहीं किया
इट डज नॉट मीन दैट वंस इन अ ईयर ही मर्डर समवन
और इसका मतलब ये नहीं कहता है कि साल में एक बार किसी का उसने हत्या किया
इन सिमिलर मैनर Jesus said that you should not be angry.
और उसी प्रकार यीशु मसीह कहना चाह रहा है यहाँ पे कि हमें उसी प्रकार किसी पर क्रोध नहीं करना है
It is not, I am not saying that I have come to that life.
और मैं ये नहीं कहता कि उस जीवन तक मैं पहुंच चुका हूँ
But that is what God wants me to seek for.
और परमेश्वर चाहता है कि इस जीवन ऐसे जीवन के लिए मैं खोज करूँ
It's not enough that I lose my temper once in a while.
और ये ठीक नहीं कि कभी मेरे क्रोध को मैं खो बैठूँ
और sometimes I get angry in my heart.
और मेरे हृदय के अंदर मैं गुस्सा हो जाऊँ
But Jesus wants me to a life where I never get angry.
और यीशु मसीह ऐसा जीवन मुझ में चाहता है जो कभी मैं क्रोध न करूं.
When I desire that life.
और जब मैं ऐसे जीवन की खोज करूंगा.
When I am pursuing that life.
और जब मैं ऐसे जीवन के पीछे जाऊंगा.
As soon as I fall.
और जब मैं उसको पा लूंगा.
As soon as I fall.
और जब मैं गिरूंगा.
Immediately I want to cry out to God.
और तब मैं तुरंत परमेश्वर को पुकारना चाहूंगा.
But if I have not seen that life.
लेकिन अगर मैंने वो जीवन नहीं देखा है.
I just say that everybody lives like this.
और फिर मैं ये कहूंगा हर कोई ऐसा जीवन जीता है.
Everybody gets angry sometimes.
हर कोई कभी ना कभी वो गुस्सा
But that is not what Jesus came to give me.
और ये ऐसा जीवन यीशु मसीह देने नहीं आया.
Jesus came to give me a life where I never get angry.
यीशु मसीह ऐसा जीवन देने आया जहाँ कभी भी मैं क्रोधित नहीं होऊंगा.
In the similar manner, Jesus said in Matthew 5:27.
और मत्ती 5:27 में यीशु ने उसी प्रकार कहा.
You shall not commit adultery.
आपको व्यभिचार नहीं करना है.
But I say unto you, everyone who looks at a woman with lust for her has already committed adultery with her in his heart.
लेकिन यीशु कहता है जो कोई स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है.
It is not enough that I say that once in a year I commit adultery, it's okay.
और कहीं ऐसा कहना ठीक नहीं है कि एक साल में एक बार शायद मैं व्यभिचार करता हूँ वो ठीक है ऐसा नहीं.
Jesus said that like you never commit adultery physically.
और जैसे आपने शारीरिक तौर से कभी भी उस व्यभिचार को नहीं किया उस प्रकार.
I never want to lust my eyes.
और कभी भी मैं आंखों के साथ उस वासनाओं से किसी के और नहीं देखना चाहता.
I never want to look at a picture which will create lust in me.
और कोई भी ऐसे चित्र को नहीं देखना चाहता जो मेरे अंदर ऐसी वासनाओं को जगाए.
I don't want to see a video which will create lust in me.
और ऐसे कोई भी वीडियो को नहीं देखना चाहता जो मेरे अंदर से बुरे विचार या वासनाओं को पैदा करे.
If I fall even for 1 second,
अगर मैं 1 second के लिए भी गिर जाता हूँ,
immediately I cry out to God.
और तुरंत मैं परमेश्वर को पुकारता हूँ.
That is the life we need to seek for.
और ऐसे जीवन को हमको खोजना है.
When we seek for that life, then God will help us.
और जब हम ऐसे जीवन को खोजेंगे, तब परमेश्वर हमारी सहायता करेगा.
Jesus said many other things.
और यीशु मसीह ने ऐसी बहुत सारी चीजें कही.
Like we should never tell lies.
और हमको कभी झूठ नहीं बोलना है.
Like we should forgive our enemies.
और हमारे शत्रुओं को हमको माफ करना है.
And we should not be anxious.
हमें चिंता नहीं करना है.
And many other things which Jesus said,
और बहुत सारी चीजें यीशु ने कही
विच इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू फुलफिल
और ये असंभव है मुझे इसको परिपूर्ण करना मेरे
That's
जीवन
why I have to seek God for that.
और इसलिए मुझे परमेश्वर को खोजना है
इन Romans chapter 8
रोमियो 8 अध्याय में
इन verse 3 it says,
वचन 3 में
फॉर what द लॉ could नॉट डू वीक as इट was थ्रू द flesh God did, sending his own son in the likeness of sinful flesh, as an offering for sin, he condemned sin in the flesh.
क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी
Something which law could not do.
और ऐसा जो व्यवस्था नहीं कर पाया.
That means my own efforts could not do.
इसका मतलब कि मेरे खुद के प्रयत्न जो वो नहीं कर पाए.
We read in the previous chapters how Paul was struggling with this.
और हम पिछले अध्याय में पढ़ते कि कैसे पॉल इन सारी चीजों से संघर्ष कर रहा है.
We read that he was saying there's a lot of lust in his heart.
वो कहता है कि उसके मन में कितनी सारी वासनाएं हैं.
That he found that he, although he tried with all his efforts, he was not able to keep it.
और वो कहता है कि सारे प्रयत्नों, अपने सारे मेहनत, कड़ी मेहनत और प्रयत्नों के बाद भी उसको वो नहीं कर पाता.
Then he came to a place where he realized in verse 20.
और 20 वचन में वो ये एहसास कर लेता है.
No, in verse 18 says.
18 वचन में.
That nothing good dwells in me.
और वो कहते हैं कि मुझ में कोई भी बात अच्छी नहीं है.
That is in my flesh.
मेरे शरीर में.
It is not talking about any external sin.
और ये कोई बाहरी रूप का जो पाप है उसके बारे में नहीं बात करता.
It's talking about inside me there is nothing good.
और वो कहता है मेरे भीतर कुछ भी अच्छा नहीं है.
That is something which I need to get a revelation on.
और इस बात पर मुझे प्रकाशन होना जरूरी है.
Only when I know that there is nothing good in me.
और जब मैं इस चीज को जानूंगा कि मेरे अंदर कुछ भी बात अच्छी नहीं है.
Only then I can trust in God completely.
और तभी मैं परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा रख पाऊंगा.
Only then I can, when temptation comes, I can just lean on Jesus.
और जब परीक्षण आएंगे तब ऐसे स्थान पर मैं यीशु मसीह पर पूरी तरह से निर्भर रहूंगा.
It says here what law could not do, God did by sending his son in the likeness of sinful flesh.
और यहां लिखा है कि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण न कर सकी उसको परमेश्वर ने अपने पुत्र को पाप में शरीर में भेजकर कर दिखाया.
So Jesus came in the likeness of my flesh.
और यीशु मसीह मेरे ही समान शरीर की अवस्था के अंदर इस संसार में आया.
He was capable to be tempted like me.
और मेरे समान ही जो हर एक परीक्षण के अंदर जब हम प्रलोभित होते वैसे ही वो हुआ.
And that is why we have an example before us.
और इसीलिए हमारे सामने एक उदाहरण है.
That is why in verse 4 says that the requirement of the law might be fulfilled in us.
और इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए.
So what Jesus meant when he said the requirement of the law was fulfilled is this.
और ये यीशु मसीह जब यहाँ पर कहता है कि जो व्यवस्था की जो 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 चीजें हैं वो पूरी होनी चाहिए, इसका मतलब ये है
that I will be able to overcome sin.
इसका मतलब मैं उस पाप के ऊपर विजय प्राप्त करूंगा.
Who do not walk according to the flesh but according to the spirit.
और मैं शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलूंगा.
So that is what God wants me to seek for.
और यही परमेश्वर चाहता है कि मैं खोजूं.
That I live according to the promptings of the Holy Spirit.
ताकि मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार जीवन बिताऊं.
That I live depending on the Holy Spirit.
पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर जीवन बिताऊं.
A life which is by faith.
और ऐसा जीवन जो विश्वास के द्वारा है.
It says that a righteous shall live by faith.
और वचन कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा.
There, I can either live depending on my own abilities.
और मैं अपने जीवन की योग्यताओं के ऊपर निर्भर होकर जीवन जी सकता हूँ.
और आई कैन लिव डिपेंडिंग ऑन गॉड.
या परमेश्वर की जो योग्यता है उस पर मैं निर्भर होकर जी सकता हूँ.
The righteous is not just saved by faith.
और धर्मी जो है केवल विश्वास के द्वारा उसका उद्धार नहीं होता.
He is not just saved by faith, but he also lives by faith.
केवल उसका उद्धार से विश्वास से उद्धार नहीं होता लेकिन उसके द्वारा वो जीता भी है.
That means every day I need the dependence on God.
इसका मतलब प्रतिदिन मुझे परमेश्वर के ऊपर जीने के लिए निर्भर होना है.
That means every day I depend on His power.
इसलिए प्रतिदिन मुझे उसकी सामर्थ के ऊपर निर्भर होना है.
Every day I fill my heart with His strength.
और इसलिए प्रतिदिन मेरे हृदय को उसके बल से मैं भरता हूँ.
Every day I say that I cannot do it without You.
और प्रतिदिन मैं कहता हूँ कि प्रभु मैं तेरे बिना नहीं कर पाऊंगा इस चीज को.
Every situation I say that I cannot overcome without You.
और हर परिस्थिति में मैं कहता हूँ कि प्रभु तेरे बिना मैं विजय नहीं प्राप्त कर पाऊंगा.
That is how we come to a life where we can walk in victory.
और ऐसे इसी प्रकार से हम ऐसे जीवन में आते हैं जो विजय में चलने के समान है.
Where we depend on God all the time.
और हर समय हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं.
And that is how we walk in the Spirit.
और उसी प्रकार हम आत्मा में भी चलते हैं.
And we learn to listen to the voice of the Spirit.
और हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुन पाते हैं.
And when Holy Spirit tells us something, we immediately listen.
और जब पवित्र आत्मा हमसे कुछ कहते हैं हम तुरंत उसको सुनते हैं.
That is what God wants us to do.
और यही परमेश्वर चाहता है कि हम करें.
In Galatians,
गलातियों
चैप्टर 5
उसका 5 अध्याय
इन वर्स 16
गलातियों 5:16
इट सेज वॉक बाय द स्पिरिट एंड यू विल नॉट कैरी आउट द डिजायर्स ऑफ द फ्लैश.
आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे.
सो दैट इज द ओनली वे आई कैन ओवरकम द डिजायर्स ऑफ द फ्लैश.
और इसी प्रकार से जो शरीर की लालसाओं के ऊपर मैं विजय प्राप्त कर सकता हूँ.
इट इज नॉट बाय डिटर्मिनिंग माई सेल्फ और मेकिंग लॉट ऑफ रेजोल्यूशन.
और अपने मनोबल से बहुत सारे निर्णय करने के द्वारा ये नहीं हो सकता.
इट इज बाय वॉकिंग बाय द स्पिरिट.
लेकिन ये पवित्र आत्मा के द्वारा चलने से ही हो सकता है.
दैट मीन्स आई लिसन टू द स्पिरिट.
इसका मतलब मैं पवित्र आत्मा को सुनता हूँ.
एंड वेन द स्पिरिट से even this small thing,
यहां तक कि पवित्र आत्मा जब मुझे छोटी छोटी बातें बताता है
I listen to it.
उसको सुनता हूं.
I do not live by any rule that I have to do this, I have to do, and I should not do this.
और मैं कोई नियम के आधार पर नहीं जीतता हूं कि मुझे ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है.
And if, for example, if Holy Spirit tells me that just stop looking at the mobile.
अच्छा छोटी से छोटी बात, पवित्र आत्मा अगर मुझे यदि कहता है कि अपने मोबाइल को देखना बंद करें,
आई लिसन टू इट,
मुझे मैं उसको सुनता हूँ,
और होली स्पिरिट टेल्स मी दैट डोंट स्पीक दैट,
और पवित्र आत्मा मुझे कहता है कि ऐसी बात, ये बात मत करें,
जस्ट स्टॉप स्पीकिंग दैट,
और ऐसा बोलना बंद करें,
एंड इमीडिएटली आई लिसन टू दैट,
और तुरंत मैं उसको सुन पाता हूँ,
दैट इज हाउ आई ओवरकम सिन,
इस प्रकार से मैं पाप के ऊपर विजय प्राप्त करता हूँ,
अदरवाइज इफ आई जस्ट लिव अकॉर्डिंग टू माई ओन माइंड,
और नहीं तो मैं अपने ही मन के अनुसार जीवन जीते रहूंगा,
आई कैन नॉट ओवरकम सिन,
और मैं तब पाप पर विजय प्राप्त नहीं कर पाऊंगा।
That is why in verse 17 it says,
और 17 वचन में इसलिए लिखा है,
the flesh sets its desire against the spirit,
और शरीर आत्मा के विरोध में है,
spirit against the flesh,
और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा
for
करता
these
है,
are in opposition to one another,
और ये एक दूसरे के विरोधी है,
so that you do not do the things that you please,
इसलिए कि तू जो करना चाहो वो न करने पाओ,
that means I should not do the things which I please,
और इसका मतलब जो मुझे प्रसन्न करती वो चीजें मैं न करूं,
I should not live by my feelings,
और मैं अपनी भावनाओं के आधार पर जीवन न जीऊं,
और what gives me more pleasure I should not live by that,
और जो बातें मुझे और अधिक आनंद देती उस बात के ऊपर निर्भर होकर मैं जीवन न जीऊं,
I walk by the spirit,
और मैं आत्मा के द्वारा चलूं,
Jesus said in Matthew chapter 6,
मत्ती 6 में यीशु मसीह ने कहा,
Matthew 6:33, but seek ye first His kingdom and His righteousness and all these things shall be added to you.
और इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी.
So Jesus wanted us to seek His kingdom and His righteousness.
और यीशु मसीह चाहता था कि हम पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करें.
There are many things which Jesus said prior to that.
और उसके पहले बहुत सारी चीजें यीशु मसीह ने कही.
Like we worry about what we eat, what we drink.
और इस हमको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहना है, उसकी चिंता न करें.
That means all the things of this world.
इसका मतलब ये संसार की सारी चीजें,
माय वर्क प्लेस,
और मेरे काम की जगह,
माय एडुकेशन, चिल्ड्रंस एडुकेशन,
और मेरा अभ्यास है, मेरे बच्चों का जो पढ़ाई है,
एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स,
और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं
दैट फिल आवर माइंड,
और जो हमारे मन को भरता है,
एंड जीसस सेड दैट फर्स्ट थिंग आई शुड सीक इज फॉर हिज किंगडम,
और यीशु मसीह ने कहा पहली चीज जो मुझको खोजना है उसके राज्य को खोजना है,
एंड हिज राइटियसनेस,
उसकी धार्मिकता को,
दैट मीन्स आई नीड टू सीक फॉर this life.
इसका मतलब ये ऐसे जीवन को मुझे खोजना है.
If I do not seek for it, I will not find it.
अगर मैं ये जीवन को नहीं खोजूंगा तो मैं इसको नहीं प्राप्त करूंगा.
For that, I need to know the value of it.
और इस जीवन का मूल्य मुझे जानना जरूरी है.
It is more than my living.
और मैं अपने आप के लिए जो जीवन जीता हूँ उससे ये अच्छा या उससे मूल्यवान है. मैं जो कमाता हूँ उससे ज्यादा.
That means like I go to job, I seek for a promotion, I seek to do my work properly, or all that things. More than that, I should seek for God's kingdom.
और जैसे मैं काम पे जाता हूँ, प्रमोशन के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, उन सब बातों से बढ़कर परमेश्वर के राज्य को मैं खोजता हूँ.
That means I have a cry in my heart all the time.
हर समय मेरे हृदय के अंदर एक पुकार है.
Lord, I want to seek that righteousness which you want me in my life.
और प्रभु जो धार्मिकता तू मुझे चाहता है कि मैं खोजू उसको मेरे जीवन में खोजना चाहता हूँ.
Because Jesus did not come to just allow me to live in a level where I just fall into sin and again rise.
और परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए संसार में नहीं है कि ऐसे स्तर में मैं जीवन जीऊं जहां मैं गिरता हूं और फिर उठता हूं इस प्रकार से.
But Jesus came to give a higher life.
लेकिन यीशु मसीह इसलिए कि एक उच्च स्तर का जीवन दे सके.
And he paid a very high price for that.
और उसके लिए उसने एक बड़ी कीमत को चुकाया है.
And I need to understand that Jesus has paid a very heavy price, not just for me to live at a low level.
और मुझे इस बात को समझना है, यीशु मसीह ने एक बड़ी कीमत को चुकाया है कि एक छोटे स्तर का जीवन जीने के लिए नहीं.
He came that I might have that abundant life.
और वो इसलिए यीशु मसीह आया कि मेरे पास वो भरपूरी का जीवन हो.
That I need to seek for that life.
और मुझे यो जीवन को खोजना है.
Maybe I need to mourn for that.
और मुझे उसके लिए खेद करना है या उसके दुखी होना है.
That is why Jesus before he began his sermon.
और इसके पहले कि यीशु मसीह अपने संदेश को शुरुआत करे,
he said three or four things.
तीन और चार चीजें यीशु मसीह ने कही.
First he said blessed are the poor in spirit.
और उसने कहा कि जो मन में दीन है उनके लिए उनको धन्य कहा है.
For theirs is the kingdom of heaven.
परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है.
That means there is a poverty of spirit where I know that my need.
और मेरे अंदर की जो गरीब है उसको मुझे देखना है.
I know that I need something.
और मुझे जानना है कि मुझे किस कोई चीज की जरूरत है.
आई नो दैट आई कैन नॉट डू विदाउट हिम.
और मैं इसको जानना है कि मैं उसके बिना नहीं कर सकता.
दैट इज व्हाई आई एम पुअर इन स्पिरिट.
और इसलिए मैं आत्मा के अंदर मैं गरीब हूँ.
आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट कंडीशन इन माय लाइफ.
और मेरी जो अभी की जो अवस्था है उससे मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा.
आई एम नॉट आई डू नॉट वॉन्ट टू लिव एट द सेम लेवल ईयर ऑन ईयर.
और हर साल में वही स्तर पर जीवन नहीं जीता रहूंगा.
आई डू नॉट वॉन्ट टू बी एट द सेम लेवल आफ्टर 10 years.
और 10 साल के बाद भी मैं आत्मिक उस स्तर में ही नहीं बना रहूंगा.
आई डू नॉट जस्ट वॉन्ट टू बी ए डिसेंट पर्सन फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ.
और मेरे जीवन के हर एक समय के अंदर मैं एक अच्छा व्यक्ति बना रहकर उतना ही काफी नहीं.
आई वॉन्ट टू ग्रो इन द लॉर्ड.
लेकिन मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूँ.
दैट इज वॉट क्रिएट्स ए पॉवर्टी इन स्पिरिट इन साइड आवर हार्ट्स.
और यही आत्मा के अंदर जो मेरी आत्मा के अंदर एक गरीबी या दीनता को पैदा करता है.
जीसस सेड ब्लेस्ड आर दोज़ हू मॉर्न.
और यहाँ पे लिखा है कि जो शोक करते हैं उनके लिए धन्य है.
Jesus said, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness."
जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे उनको धन्य कहा है.
So may God help us in the coming days to seek after these things.
और परमेश्वर सच में आने वाले दिनों में हमारी मदद करे कि इन चीजों को हम खोजे.
That means we keep aside some of our programs and we really seek after these things.
और हमारे कार्यक्रम हमारी चीजों को बाजू में रखकर हम इन चीजों को ढूंढे.
And we seek after a life which God has promised in His Word.
और परमेश्वर के वचन में जो उसने वायदा दिया उस जीवन को हम खोजे.
And Jesus said, if you thirst and come to me, I will fill you.
और यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम प्यासे हो मैं तुम्हें भरूंगा.
And if you believe in me,
यदि आप तुम मुझ पर विश्वास करो,
it's not enough to have a thirst, but I can have a faith that God will fill me.
और केवल प्यास रखना उतना ही, लेकिन ये विश्वास रखना कि परमेश्वर मुझको मरेगा.
That means Jesus has promised this life.
और परमेश्वर इस चीज को परमेश्वर ने वायदा दिया है.
It's not just written. For us to just read and enjoy.
और खाली केवल पढ़ने के लिए या ऐसे ही ये वचन नहीं लिखा हुआ है.
It is for me to live this life.
और ये इसलिए लिखा है कि मैं इस जीवन को जीने पाऊं.
May God help.
प्रभु हमारी सहायता करे.
Thank God for the words God spoke to us.
परमेश्वर धन्यवाद जो वचन के द्वारा परमेश्वर से हमसे बातें किया.
I always like to listen to such things that are spoken.
और सचमुच मुझे अच्छा लगता है जब ऐसी बातें जब बताया जाता है.
लाइक व्हाट जीसस स्पोक इन द सर्मन ऑन द माउंट.
और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बातें किया जो पहाड़ी उपदेश में.
इट चैलेंजेस मी टू लिव एट अ हायर लेवल दैट आई एम लिविंग नाउ.
एक चुनौती का वचन है कि ताकि मैं एक ऊंचाई में मैं जी सकता हूँ अपने अपने आत्मिक जीवन में.
मेनी टाइम्स द डेविल वांट्स टू मेक अस सैटिस्फाइड विद व्हाट वी आर नाउ. इट्स ओके वी कैन लिव लाइक दिस.
बहुत बार शैतान क्या करता है कि हमें तृप्त एक जिंदगी में रहने की हमें वो सांत्वन देता है कि हम वैसे रहें.
We don't know. We including me. We have not really understood what price he has paid. That's why we want to live in the same level.
और जो मोल प्रभु यीशु मसीह ने चुका है हमें काफी वो समझ नहीं है. मतलब हम उसी इसमें रहने की हम कोशिश करते हैं.
He always is encouraging us to come little more in a better place, better life.
और परमेश्वर यही चाहता है कि हम एक ऊंचाई पे आए, थोड़ा अच्छी जगह पे पहुंचे.
And as brother said that it is impossible for our own with our own strength.
और जैसे भाई ने बताया कि हमारी ताकत से वो हो नहीं सकता.
When we read first time when we read the word Matthew 5:6-7.
और पहले बार जब हम मत्ती का सुसमाचार 5:6-7 पढ़ते हैं.
We really read it honestly. We know that we get a cry in our heart, Lord, this is impossible. What, this life is impossible.
और हम जब हम पढ़ेंगे इसको सचमुच में हम ये सोचेंगे कि प्रभु ये असंभव है, ये हो नहीं सकता है.
That is what God wants us to confess honestly.
और यही परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चाई से इस बात को हम अंगीकार करें.
Whatever is written in Matthew 5:6-7 is impossible for me.
और जो भी मत्ती सुसमाचार 5:6-7 में जो लिखा गया है वो जो है वो असंभव है. वो अपनी मतलब वो कर नहीं पाते. वो असंभव है.
Because it is all concerning the heart. Externally I can be good with my own strength, but in the heart I cannot do anything.
और बाहर तरीके से चीजों को मैं अच्छा दिखा सकता हूँ, लेकिन ये जो बातें हैं जो हृदय की अंदर की बात है, हृदय की बात है.
Suddenly some anger or irritation comes, I can control, but it's there in the heart.
और अगर अचानक से अगर क्रोध आ जाता है, हो सकता है कि मैं उसके ऊपर काबू नहीं पा सकता, लेकिन वो हृदय के अंदर रहता है.
सो दैट्स ब्रदर सेड दैट इज द टाइम व्हेन गॉड वांट्स मी टू क्राई आउट टू हिम.
और वो उस समय पे मुझे रोना है, पुकारना है,
लॉर्ड दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू ओवरकम,
और कहना है कि परमेश्वर मेरे लिए असंभव है, मैं इसके ऊपर उभर नहीं पा रहा हूँ.
सडनली व्हेन आई डोंट नो, सडनली इट कम्स आउट,
और मैं जब नहीं जानता हूँ तुरंत वो आ जाता है.
सो दैट इज द टाइम व्हेन मी टू क्राई आउट टू लॉर्ड, लॉर्ड यू हेल्प मी, यू गिव मी ग्रेस.
और उस ऐसे स्थिति में मुझे पुकारना है और रोना है और कहना है कि प्रभु मुझे अनुग्रह देना.
The life that God wants us to have is a natural life.
और जो जीवन परमेश्वर चाहता है वो एक स्वाभाविक जीवन चाहता है.
Not a life where we with my own strength I anyhow try to control myself. That's not the way God wants me to live.
और एक ऐसा जीवन नहीं कि मैं अपनी चीजों के ऊपर मैं खुद उसके ऊपर परिश्रम करूँ. वैसा जीवन नहीं.
When I always when my life is totally dependent on God, then that life comes naturally. Then I don't have to take an effort.
जब मेरा जो जीवन है परमेश्वर के ऊपर निर्बल होता है, तभी वो जीवन जो है वो परमेश्वर के ऊपर बना रहता है.
When I leave that place and I when I think that I can do it on my own, that time I will fall.
और जब उस स्थिति से हटकर मैं सब सोचता हूँ कि मैं अपने तरीके से मैं जीऊंगा, तब जाकर मैं गिरता हूँ.
We need to always remember it is impossible for me, but Lord, you can make it possible. That attitude, that inside our heart, we should know that.
और ये जानना है कि ये मेरे से असंभव नहीं है, सिर्फ आप ही उसको संभव कर सकते हैं. इस बात को मुझे जानना है.
That revelation that brother said about nothing good dwells in my flesh.
और जैसे कि भाई ने कहा, कुछ अच्छा बात जो है मेरे शरीर के अंदर नहीं रहता है.
I cannot do anything good and whatever good I do with my own strength is filthy rags before him.
और जो भी अच्छे काम मैं अपने बल से मैं करता हूँ, वो एक खचरा का समान है.
So I need to always, Lord, I want to always do it with your power, everything.
और जो भी मैं करूँ, मैं आपके सामर्थ के साथ करना चाहता हूँ.
So that glory only belongs to Jesus.
ताकि जो महिमा जो है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को जाए.
In the last book of the Bible, Revelation, last chapter, 22.
प्रकाशित का आखिरी जो पुस्तक 22वां अध्याय.
In the 17th verse.
उसका 17 में.
It reads here, the Spirit and the Bride say, "Come."
यहाँ पे ऐसा लिखा गया, आत्मा और दुल्हन कहता है कि आने के लिए.
Let the one who hears say, "Come."
और जो सुनता है सुनते हैं वो आ जाओ.
सो इफ आई हियर हिज वॉइस, लेट आई नीड टू कम टू जीसस.
और अगर मैं उस आवाज को सुनता हूँ और प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनता हूँ, मुझे आना है.
एंड देन इट सेज, लेट द वन हु इज थर्स्टी कम.
और जो प्यासा है वो आए.
लेट द वन हु विशेस टू टेक द वाटर ऑफ लाइफ विदाउट लेट द वन हु विशेस टू टेक द वाटर ऑफ लाइफ विदाउट कॉस्ट.
और जो बिना जो जीवन का जल को लेना चाहता है वो आए.
God wants me to come to him with a thirsty heart.
और परमेश्वर चाहता है उस प्यासे हृदय के साथ परमेश्वर के पास आए.
And freely to drink from him.
और मुफ्त में उस सोते से पिए.
God is giving me a free the Holy Spirit is giving the water of life freely for me.
और वो जीवन का जो सोता है वो मुफ्त में वो देना चाहता है.
We know that in even when he was on earth, Jesus he said, He who is thirsty, let him come to me and drink.
और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई प्यासा है मेरे पास आए और पानी पिए.
Unless we have a thirst and hunger in our hearts, we will not pursue this life.
और जब तक हमारे अंदर वो प्यास और वो भूख नहीं है, वो जीवन को हम नहीं पा सकते.
Even the thirst also God only can give. We cannot create the thirst.
और वो जो भूख और प्यास जो है वो भी जो है वो परमेश्वर ही दे सकता है. वो हम अपने हिसाब से हम उसको बना नहीं सकते.
When I really thirst for him, he can give this life to me.
और जब मैं वो उस प्यास के बारे में जब मैं मांगता हूँ, वो परमेश्वर ही दे सकता है.
So he can write these laws in my mind and heart, and I don't have to. God only reminds me of things.
और वो जो नियम की बातें जो है वो ही लिख सकता है और वो ही याद कराता है. परमेश्वर उस नियम को याद कराता
है. Maybe ask the God, the Holy Spirit to help us. In our daily life to live this life that God has called us for.
और परमेश्वर से हम मांगे कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करे कि जो जीवन वो चाहता है वो जीवन को हम जिए.
Always depending on him for everything.
और हमेशा उसके ऊपर ही निर्बल में हम बने रहे.
Thank God what we heard.
परमेश्वर को धन्यवाद जो हमने सुना. और जैसे भाई बिजू और डैनी ने शेयर किया,
जेरेमाया चैप्टर 17 वर्स 10.
और जरमाया का जो पुस्तक उसका उसका 17 का 10
इट सेज ओ योर आई द लॉर्ड सर्च द हार्ट
और यहां वहां पे कहता है कि मैं परमेश्वर जो है हृदय का खोज करता है
आई टेस्ट द माइंड
और मैं जांचता हूं
इवन टू गिव ईच मैन अकॉर्डिंग टू हिज वेज
और हर एक मनुष्य का उसके 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 अनुसार
अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स ऑफ हिज डीड्स
और उसका जो काम के अनुसार मैं जांचता हूं
सेज आई फर्स्ट सर्च द हार्ट
और यहां पे वो कहता है उसका हृदय को वो खोजता है
व्हाट इज गोइंग इन माय हार्ट
कि हृदय के अंदर क्या चलता है उस चीज को देखता है
he tests my mind.
और वो मन को जांचता है
and he sees my ways.
और मेरे रास्ता को देखता है
you know, and the results are according to what I do.
और परिणाम जो है जो मैं करता हूँ उसके अनुसार है
first God sees really is my heart knows towards him.
और सबसे पहले जो है परमेश्वर देखता है कि मेरा हृदय कैसा है उसकी तरफ
डू आई रियली लव हिम डू आई रियली वांट टू ओबे हिम
क्या मैं सचमुच में उससे प्रेम करता हूँ उसका आज्ञा पालन करता हूँ
डू आई रियली वांट टू वॉक इन हिज वेज
क्या मैं सचमुच में उसके रास्ता के अनुसार जो वो चाहता है मैं चलता हूँ
नो एंड देन ही सेज देन द रिजल्ट्स कम इन
और फिर वो कहता है उसके बाद उसका जो परिणाम है वो आता है
वन मोर वर्स इफ यू रीड इन अबाउट पॉल
और एक जो वचन है पौलुस जो कहता है
Life of Paul.
Paul के जो जीवन के बारे में
If you read, I'll go to listen brief. It says in from verse he says 3, chapter 1 Corinthians chapter 15.
पहला कुरिन्थियों 15 उसमें तीसरा वचन
And he says about, like, I deliver to you as of first importance what I receive from God. I deliver to you.
और जो मैंने परमेश्वर से पाया है वो मैंने आपको दिया है
And he says about Christ, you know, he died and he was resurrected.
और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जिस प्रकार से वो प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और फिर उसका उद्धार हुआ
Then he appeared to Cephas and then the other 12 disciples.
और जैसे कि फिर उसने प्रकट किया
And then he said
शिष्यों के बीच में वो फिर प्रकट हुआ
And he appeared to another 500 brethren.
और फिर 500 लोगों के सामने वो प्रकट हुआ
And James also
और James को भी प्रकट हुआ
And here you say in the verse 8
उसका आठवां वचन में ऐसा लिखा है
And last of all as to one untimely born
और आखिरी में जो मुझे वो दर्शन दिया वैसा
He appeared to me also
मुझे भी वो दर्शन दिया
He says, "For I am the least of all apostles."
मैं सबसे छोटा हूँ सब मनुष्यों में.
Secondly, I am not fit to be called an apostle.
और मैं एक apostle कहने का लायक भी नहीं हूँ.
Because I persecuted the church.
क्योंकि मैंने बहुत कलीसियाओं को सताया है.
But here comes the part. He says, "But by the grace of God, I am what I am."
और फिर वो कहता है कि परमेश्वर के अनुग्रह से मैं जो हूँ मैं हूँ.
And His grace toward me did not prove vain.
और उसका जो अनुग्रह है जो ऐसा व्यर्थ नहीं गया
अनटाइमली बॉर्न ही इज सेइंग आई एम अ पर्सन हु वाज नॉट बॉर्न नॉर्मली
और वो कहता है कि जिसका जो जन्म जो है ऐसा ही मतलब जन्म नहीं हुआ मतलब ठीक से जन्म नहीं हुआ है
एंड ही इज सेइंग आई एम लीस्ट इफ यू सी द लाइफ ऑफ पॉल एंड ही कम्स टू अ प्लेस वेयर ही सेज आई एम लीस्ट ऑफ एवरीबॉडी आई एम नॉट अ पर्सन हु इज रियली हाई अप But I'm least of all apostles.
और पौलुस कहता है कि वो अपने आप को बहुत ही छोटा एक मनुष्य अपने आप को बहुत छोटा करके कहता And है कि मैं बहुत छोटा हूँ
He speaks about what he has done also. He's okay. He doesn't mind like no, I have persecuted church. That was wrong I did.
और वो कहता है कि उसने क्या क्या किया उसने काफी कलीसियाओं को उसने सताया था और काफी कुछ चीजें उसने 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 छोड़ भी पहुंचाया था
But the best part is says by the grace of God I am what I am
और सबसे अच्छी बात यह है कि वो ये कहता है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह से मैं जो हूँ मैं हूँ
Because he has a perfect plan for me
क्योंकि उसके पास मेरे लिए एक सिद्ध एक योजना है
you know, it's not like we are born just like that you know but God has made each one of us with a plan with you know, to make us like him
aur hamara jo janam hai aisa hi nahi hua hai parmeshwar ke paas mein hum sab ke liye ek yojana hai jo usne hamare liye bana rakha hai
but if you read this part of that what he says verse 10 also if you read
uska 10 mein aage agar hum padhte hain us adhyay mein
later part and he says this great not to be win but I labored even more than all of them yet Not I, but the grace of God with me.
और यहाँ वहाँ पे लिखता है कि मैं काफी परिश्रम किया हूँ लेकिन जो भी मैंने किया है वो परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार मैंने किया.
See, many things, you know, like I have been like there are so many sins which I went through early, tried to labor, do this, do that. But ultimately, it is God who is at work, not me who is at work.
और काफी बाहर हम लोग परिश्रम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन इसका जो मूल्य बात यही है कि परमेश्वर ही उस काम को मोल लगाता है और वो ही वो अनुग्रह देता
है. There's a place where he says, "Stand still and know that I am God."
और एक जगह में ऐसा लिखा है कि स्थिर रहना और जानना कि मैं ही परमेश्वर हूँ.
First is be still, and second know. It's just not be.
और कहता है कि स्थिर रहे और जान ले.
No, do I really know God?
क्या मैं सच में
But do I know God?
क्या मैं परमेश्वर को जानता हूँ?
No, it's time where I have to have fellowship with God.
और एक समय है कि जो मुझे परमेश्वर के साथ सहभागिता में बने रहना है.
No, where we have to be really be broken.
जहाँ पे मुझे सचमुच में मुझे अपने आप को मुझे तोड़ना है, टूटना है.
No, God, I have seen sometimes in a place God brings you to such a place. That you know all our egos and like I can see in my life, my ego, my pride, my everything is broken into pieces. You know, and I come to that place.
और एक ऐसा एक स्थिति में मैंने देखा है कि जो ईगो है और जो भी चीजें जो घमंड है वो सब चीज को परमेश्वर तोड़ के एक स्थिति पे लाके खड़ा करता है.
And then when I see up, I see God, you know.
और उस स्थिति में जब मैं देखता हूँ तो मैं परमेश्वर को देखता हूँ.
The case has happened, you know, like a Salim brother Abu.
और ये एक ऐसा एक घटना हुआ है जो मैंने भाई अबू से भी मैंने बताया है.
The place, you know, like, one CEO had come from US.
और एक एक जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे एक CEO आया था US से.
And we finished the work, everything was done.
और काम सब हो गया था, सब कुछ हो गया था.
And you know, and after the same thing, the boss came, he started this thing. This was not proper, that was not proper, and this and that, all that.
और फिर भाई का जो बॉस था वो आ गया और कहने लगा कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं हुआ है.
But you know. He came to a place where he gave me a certificate. He said, "You know, I don't have faith in you. I don't trust you."
और उसने एक ऐसा एक सर्टिफिकेट दिया कि मैं मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है और ना ही मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ.
I was feeling so bad when I came back home.
और मैं जब घर आया मैं बहुत ही मतलब अपने आप बहुत ही एक मतलब ठीक नहीं महसूस करता था.
And came back home and I was sitting and I was thinking why he said such a thing.
और like, मैं सोचने लगा क्यों उसने मेरे बारे में ऐसा कहा.
God, am I such a person? Like, you know, I worked so hard, I did everything.
और मैंने परमेश्वर से कहा कि मैं क्या सचमुच में ऐसा एक व्यक्ति हूँ क्या, मैं इतना मतलब परिश्रम किया, इतना मेहनत किया, काम किया.
But at the time, you know, nothing happened. I thought something will be. I opened a Bible, some verse I'll get, but nothing, you know, some.
और मैं सोचा कि कुछ वचन मिलेगा लेकिन कुछ नहीं हुआ.
God will comfort me and all that.
और मैं सोचा कि परमेश्वर मुझे comfort करेगा, आराम देगा.
But was one thing that came to me straight, you know, like.
और एक चीज जो सीधा आया मेरे पास.
I think if a person speaks to you, you know, like he doesn't have faith in you or he doesn't trust you.
और एक व्यक्ति अगर ऐसा बोलता है कि वो तेरे ऊपर भरोसा नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है.
But how many times, you know, when I have spoken to you, did you trust me and do you have faith in me?
कितने बार मैंने तुमसे परमेश्वर का मैंने जब बात किया तुम्हारे साथ, तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया, मेरे ऊपर विश्वास किया.
Do you have that faith in me to listen to me or do you run the way that you wanted?
और तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया या तुमने तुम्हारे ही अनुसार तुम भागते रहे जैसा तुम्हें ठीक लगा.
I was thinking over it, but I found that no, God was right.
और फिर मैंने कहा कि परमेश्वर जो है वो सही है.
These are the places when you know we God has to bring us down to we can see his glory.
और ऐसे स्थिति पर भी परमेश्वर हमें नीचे लाता है और उसका महिमा को प्रकट करता है.
We can know that he is true God and loves us.
और वो एक सच्चा परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है.
फादर, गुड फादर डिसिप्लिन्स हिज चिल्ड्रन.
और एक अच्छा जो पिता जो है अपने बच्चे को ताड़ना देता है, सिखाता है.
एंड ही यू नो ही लव्स अस सो मच देन ही विल डिसिप्लिन.
और वो ताड़ना तब देता है जब हमसे उतना प्रेम करता है, जब वो प्रेम करता है.
ऑन आवर पार्ट, ऑन माय पार्ट, वी हैव दैट यू नो लाइक आई एम ओके लॉर्ड, दैट आई एम ओके, आई एम ओके टू गो थ्रू दैट डिसिप्लिन एंड दैट.
और मेरे भाग में मैं परमेश्वर से कहा ठीक है प्रभु, आपके अनुसार चीजों को आप ठीक.
ऑल थिंग्स दैट वी गो थ्रू एवरीबॉडी नोज, इट्स नॉट हिडन, बट एवरीबॉडी नोज दैट ऑल दिस थिंग्स इन द वर्ल्ड आर टेम्परल.
और हम सब जानते हैं संसार के सब जो बातें वो सिर्फ थोड़े समय के लिए.
आवर लाइफ इज नॉट परमानेंट.
हमारा जीवन है परमानेंट नहीं है.
No, nor our houses or the, you know, or the bosses or the salary or work. Everything one day is going to go.
जो घर है, जो भी चीजें हैं, एक दिन सब चला जाएगा, सब खत्म हो जाएगा.
Life that God gives and the word He gives.
और जो जीवन जो देता है, जो वचन जो देता है, वो बना
रहेगा. That will remain forever.
और वो जो है, अंतिम तक बना रहेगा.
So now let's, as we say, God, He says, when He searches a heart, now like I should say, God, when You search my heart, let that desire for You be always there.
और मैं यही प्रार्थना करता हूँ, जब परमेश्वर मेरे हृदय को खोज करे, वो जो इच्छा जो परमेश्वर के लिए है, वो मेरे अंदर बना रहे.
Like that thing will be desired, be like, oh God, I want to be with You, be like You.
और ऐसा एक इच्छा कि प्रभु कि मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तेरे साथ बना रहना चाहता हूँ.
Daniel was saying, first you seek the kingdom of God and His righteousness.
जैसे भाई डैनी ने कहा कि पहले परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता का खोज
करो. That should be in my heart.
और वो मेरे हृदय में मेरे अंदर बना रहना.
I want to seek Your kingdom
कि मैं परमेश्वर की राज की खोज करूं.
I want to seek Your righteousness first.
आपके धार्मिकता की खोज करूं.
And when God sees those things in your heart, He's like, all will be added. Whatever things you need in your life, will be added to you.
और जब परमेश्वर इस चीज को मेरे हृदय में देखता है, कि वो कहता है कि फिर बाकी सब चीज वो हमें देगा.
In a place where Jesus says, no, the thing was happened like, no, they didn't wash their hands and went to eat.
और एक ऐसा घटना हुआ था शिष्यों के साथ, जब उन्होंने हाथ नहीं धोए और वो खाने चले गए.
And Jesus says, no, what goes inside doesn't defile, but what that comes outside, it comes from the heart, and that defiles a man.
और उसने ऐसा कहा, जो जो खाते हैं उससे कुछ अशुद्ध नहीं होता है, लेकिन जो अंदर से बाहर आता है, you know, वो so, अशुद्ध बातें बाहर आती है.
So I have to open the door to God and say, God, You come and see in that temple which You have built, see what is there, and then You come and, you know, drive out this all these things away. And You come and reside in my heart.
मुझे वो हृदय का वो द्वार को खोलना है और कहना है कि प्रभु आप आए और देखना, और जो भी अशुद्ध चीजें हैं उसको आप बाहर निकालना और आप मेरे अंदर बसना.
You see, like when Jesus went to temple, He first, you know, the money lenders and everything, the people who were using, He first drove everybody out of the temple of God.
और जब प्रभु यीशु मसीह जब देखा कि वहाँ जब मंदिर के अंदर घुसा, तो वहाँ पे सब लोग वहाँ पे धंधा करने लग गए, तो उनको सब उसने भगा दिया.
And
पहले
he made a temple clean.
और वो वहाँ पे पूरा साफ सफाई किया.
So same thing, if I open my door, you know.
और जिस तरीके से मैंने अपना द्वार को जब मैं खोलता हूँ.
And ask Jesus to do His work in my life.
और जब मैं कहता हूँ कि प्रभु आप अपने जीवन मेरे जीवन में वो कार्य करना.
And He'll see that, you know, this body of mine will really be restored at the temple of God, just not for the world like temple of God, but real temple of God.
और वो जो है अपना उस हृदय को साफ करके एक परमेश्वर का मंदिर बनाएगा.
I thank God for the wonderful promises He has given us.
और प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि जो परमेश्वर के अद्भुत वायदे जो वो हमें देता है.
I also want to hunger and thirst for this. For all that He has promised me.
और जो भी परमेश्वर ने मुझे वायदे दिए, उन सारी चीजों के लिए मैं उस भूख और तरस को रखना चाहती हूँ.
John 10:10.
और यूहन्ना 10:10 में जैसे लिखा है.
The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly.
चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है. मैं इसलिए आया कि वे जीवन पर बहुतायत से पाए.
Jesus came to give me life, and not only life, that is, He want to give it abundantly.
और यीशु मसीह मुझे केवल जीवन देने नहीं, लेकिन वो बहुतायत का जीवन देने के लिए आया.
If I am really satisfied with the life which I am having now, I want to enjoy this abundant life in Christ.
और यदि मैं जो जीवन अभी जी रहा हूँ उससे मैं संतुष्ट हूँ, तो जो परमेश्वर का बहुतायत का जीवन मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगी.
And to hunger and thirst more and more for this abundant life.
और ये भरपूरी के जीवन के लिए मुझे और अधिक भूख और प्यास रखना है.
When we were worshiping, I was also touched by the love of Christ.
और जैसे हम प्रभु की आराधना कर रहे थे, यीशु के प्रेम के द्वारा मुझे स्पर्श हुआ.
How He loved us.
और कैसे उसने हमसे प्रेम किया है.
He loved us when I was a sinner.
और तब उसने हमसे प्रेम किया जब मैं पापी थी.
When I was an enemy.
और जब मैं उसकी शत्रु थी,
that time his love came to me,
और तब ऐसे समय में उसका प्यार मेरे पास आया,
and saved me,
और मेरा उद्धार किया,
and promised me this abundant life,
और उसके द्वारा उसने मुझे भरपूर जीवन के लिए एक वायदा दिया।
His when we in our Wednesday Bible study also the verse was love your enemy,
और बुधवार की बाइबल स्टडी में भी यही वचन था कि अपने शत्रुओं से आप प्रेम करो।
That kind of love he is expecting, that is his standard.
और इस प्रकार का प्रेम हमारे जीवन से अपेक्षा करता है क्योंकि ये उसका स्तर है।
But it is not there in us.
और लेकिन ये हमारे अंदर नहीं है।
But God want us to grow into such love.
लेकिन परमेश्वर चाहता है कि ऐसे प्रेम के अंदर हम आगे बढ़े।
One verse in 1 Peter 4:8.
पहला पत्रस 4:8.
Above all, keep fervent in your love for one another, because love covers a multitude of sins.
सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है।
That really spoke to my heart today morning. That keep fervent in your love for one another.
और यहाँ पे जैसे इस चीज ने मेरे मन को स्पर्श किया कि एक दूसरे के प्रेम में हम अधिक बने रहें।
Because this kind of love only can cover multitude of sins in others.
और क्योंकि इसी प्रकार के प्रेम के द्वारा अनेक पाप जो औरों के अंदर होगी उसको हम ढांप पाएंगे।
Otherwise I will be the one who will reveal others sins to others.
नहीं तो ऐसा होगा कि औरे के पापों को और गलतियों को मैं औरों को बताऊंगी।
I need this fervent love for everyone.
और हर एक व्यक्ति के लिए मुझे इस प्रकार का प्रेम चाहिए।
Without I receive it from God, I cannot to love others like this.
और परमेश्वर से प्राप्त किए बिना ये प्रेम मैं औरों को नहीं दे सकती।
I need this love God to pour out in my heart.
और मैं ये प्रेम जो है मेरे हृदय के अंदर उंडेला जाने के लिए चाहती हूँ।
Romans 5:5.
रोमियो 5:5.
And hope does not disappoint, because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us.
और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है।
I have to receive this love from God through the Holy Spirit. He can only pour out this love to in my heart.
और हमारे हृदयों के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें इसको प्रेम को हमें ग्रहण करना है। केवल परमेश्वर ही ऐसा प्रेम हमारे मन में डाल सकता है।
Then I can love others.
और तभी मैं औरों को प्रेम कर पाऊंगी।
Really, I really desire this kind of love to grow in my life.
और मेरे जीवन में इस प्रकार के प्रेम में मैं बढ़ना चाहती हूँ।
Heard about the need for a thirst in our life.
और हमने सुना कि हमारे जीवन के अंदर उस भूख और प्यास को रखने के बारे में।
It's something which we can look at our own life.
और इस क्षेत्र के अंदर हम अपने जीवन को देख सकते हैं।
We live a very satisfied, content life. In regard to our Christian life, or we have there's a desire for progress in our life.
और क्या हमारे मसीह जीवन के अंदर में एक संतुष्ट जीवन से मतलब संतुष्ट हो चुके हैं या इच्छा है उस बढ़ोती करने के लिए?
We are okay with a very low level of Christianity in our life. We are aiming for something higher.
और क्या मसीहत के निचले स्तर के साथ हम संतुष्ट हो गए हैं या हमारे जीवन के अंदर उच्च स्तर में बढ़ने का एक उद्देश्य हमारे पास है?
Unfortunately, many Christians are just satisfied when they, for example, they with that basic born again experience.
और दुर्भाग्यपूर्ण बहुत सारे मसीह जो हैं उनका जो मूलभूत जो पाए की चीज है जो उनके उद्धार के या नया जन्म पाने के उसी के साथ संतुष्ट है।
And there is no further desire, thirst to make progress.
उनके पास और एक चाहत नहीं कि वो आगे बढ़ोतरी कर पाए या विकास करे।
That situation like a child. You know, continue to be, you know, not growing. How sad it would be the heart of the parents.
और माता पिता का हृदय कितना दुखी होगा अगर उनका बच्चा जो सालों तक उसी कद में या उसी अवस्था के अंदर बना रहे।
So that is how it is. We have maybe as a matter of we may be born again. We must have come to a level of born again experience, but there is no further growth.
या हम एक नए जन पाने के अनुभव तक तो आ चुके हैं लेकिन अभी उसके आगे कोई बढ़ोती या विकास हमारे जीवन में नहीं है।
I seen Christian. Those who have taken water baptism, even beyond those who had an experience of the Holy Spirit, they think that I have passport to go to heaven.
और कई बार मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो विश्वासी जो ने पानी का बपतिस्मा लिया, यहाँ तक कि उनको पवित्र आत्मा से भरे जाने का है, उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास पासपोर्ट मिल गया स्वर्ग जाने का।
So after that they give a stagnant, stale life, no progress for years in their life.
और सालों तक वो आगे नहीं बढ़ पाते, एक ही जगह पे स्थिरता का एक सड़ाहट से भरा हुआ जीवन वो जीते हैं।
But that is not the Christian life which the Bible says.
और मसीह में ये बाइबल में इस प्रकार नहीं लिखा है मसीह जीवन के बारे में।
Let the Holy Spirit challenge our own lives.
और पवित्र आत्मा हमारे जीवनों को चुनौती देता है।
And I heard this thought which is helpful for me that you know Christian life is a revival every day.
और मैंने इस विचार को सुना है कि मसीह जीवन जो है प्रतिदिन एक जागृति का जीवन है।
Every day when I wake up I'm still looking forward to little more Christ likeness in my life.
और प्रतिदिन जब मैं उठता हूँ मैं देखता हूँ अपने आप को कि मुझे मसीह के समान और बढ़ने के लिए आगे है।
Every day I'm looking for some more progress in our life.
और कुछ मैं प्रतिदिन मैं देखता हूँ कि मुझे और भी आगे बढ़ने के लिए कुछ है।
You know the conference theme was living like Jesus lived.
और जैसे हम जानते हैं कि कॉन्फ्रेंस का जो थीम था कि यीशु मसीह के समान जीवन जीना।
We can understand once we are gripped by that, we'll be ever yearning for that step by step making progress in our life, just seeking to live just like Jesus lived on.
और जब हम उन सत्यों को पूरी तरह से हम उसको ग्रिप्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम पूरे यत्न के साथ उसमें चलने के लिए प्रयत्न करेंगे।
In our conversation with each other, in our conduct with other, we can increasingly be more like Christ like.
और हमारे एक दूसरे के साथ जो वार्तालाप एक दूसरे से जब बात होते हैं, हम और भी बढ़ोतरी के साथ यीशु मसीह के समान बनेंगे।
We have seen this, and Brother Zach always says the example of the onion.
और जैसे ब्रदर जैक हमेशा एक एक प्याज जो है उसका उदाहरण देते हैं।
ऑनियन इज द एक्सटर्नल लेयर इज पील्ड ऑफ।
और जैसे प्याज का बाहरी जो भाग है उसको हम छील देते हैं।
वी स्टिल फाइंड समथिंग इनसाइड।
लेकिन उसके बाद हम और भी पाते कि उसके अंदर और भी है।
एंड वी फील वन मोर लेयर वी स्टिल फाइंड इनसाइड।
उसकी एक परत को और भी हम छीलते और भी हम पाते कि उसके अंदर और भी कुछ है।
सो दैट इज हाउ वी कैन प्रोग्रेस टुवर्ड्स प्रोग्रेस मेक प्रोग्रेस इन आवर लाइफ।
और इसी प्रकार हम हमारे जीवन के अंदर आगे बढ़ सकते हैं।
वी मे यू नो इन एरियाज वी मे नॉट बी फिजिकली फाइट विद एनीबॉडी।
और हमारे जीवन के अंदर शारीरिक तौर से शायद हम लोगों से नहीं लड़ते होंगे।
और
दुर्भाग्यपूर्ण कई मसीह तो ऐसे भी है जो शारीरिक रूप से ऐसे लड़ते हैं एक दूसरे के
साथ। इवन इफ वी आर नॉट फिजिकली फाइट विद ईच अदर वी शुड नॉट बी सैटिस्फाइड।
और अगर हम शारीरिक तौर से नहीं भी झगड़ते एक दूसरे के साथ लेकिन हमें संतुष्ट नहीं होना।
How are things inside? There is agitation and anger.
और हमारे भीतर चीजें कैसी है, वो क्रोध है या वो परेशानी हमारे अंदर क्या है?
Hostility towards others.
एक दूसरे के प्रति में कोई विरोध की भावना है क्या?
No, God can deliver us from each of those inside sins.
और हमारे भीतर के सारे पापों से परमेश्वर हमको छुड़ाना चाहता है।
एंड हाउ इज अवर लाइफ व्हेन वी आर अलोन।
और जब हम अकेले होते तब हमारा जीवन कैसा है?
How is our walk when we are nobody is observing, we are alone.
और जब हमें कोई देख नहीं पाता तब हमारी चाल कैसी है?
So there is a good indication our own. We each one without a telling we can judge ourselves.
और किसी भी व्यक्ति को बोले बिना इस चीज में हम अपने आप को जांच सकते हैं।
We can put a mark for ourselves, not for condemnation or discouragement to. It's good to understand the truth concerning ourselves.
और हमें दंडित करने के लिए दोषित करने के लिए नहीं लेकिन ये चिन्हों को हम रख सकते हैं कि हम अपने आप को देख सकें।
How are our thoughts, our intentions, our motives, how are those things invisible things to others?
और जब हम लोग हमें देख नहीं पाते तो हमारे विचार हमारे इरादे हमारी इच्छाएं कैसी है?
So Holy Spirit can really do a work in our life, make us more and more Christ like.
और पवित्र आत्मा सच में हमारे जीवन में कार्य करके हमें मसीह के समान और अधिक समान बना सकता है।
And if there's a thirst in our life, God will definitely satisfy that.
और यदि हमारे जीवन के अंदर यदि ऐसी प्यास है तो सच में परमेश्वर उसको पूरा करेगा।
Because Jesus said that if you are thirsty, we will be satisfied.
यीशु ने कहा यदि तुम प्यासे हो तो तुम्हें सच में संतुष्ट किया जाओगे।
God will definitely fulfill the desire of the heart of a child of God if there's a desire.
और परमेश्वर के बच्चे के अंदर अगर कोई चाहत है और उसके अंदर प्यासा है तो परमेश्वर उसे जरूर पूरा करेगा।
And as we heard, it's never depending on our own will power or our own strength.
और जैसे हमने सुना कि हमारे बल के ऊपर हमारे मनो या हमारी इच्छा के ऊपर निर्णय के ऊपर ये निर्भर नहीं करता।
It is the Holy Spirit doing that work in our life.
लेकिन ये पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर करता है जो हमारे जीवन में कार्य करता है।
We also seen it's a good thing our how sensitive it's a good thing to ask how sensitive our conscience.
और ये अच्छी बात है अपने आप को पूछना कि कितना अधिक हमारा जो विवेक है वो संवेदनशील है।
See, if we keep on sinning, our conscience can be so insensitive.
और यदि हम पाप करते रहेंगे तो हमारा विवेक जो है वह बहुत असंवेदनशील हो जाएगा.
We are not listening to the voice of the Holy Spirit.
और हम पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं.
Our conscience can be hardened.
और हमारा जो विवेक है बहुत कठोर हो गया
है. We are not allowing the Holy Spirit to work in our lives.
और हम पवित्र आत्मा को अनुमति नहीं दे रहे कि वो हमारे जीवन के अंदर में कार्य कर सके.
But on the other side, we can seek to preserve our conscience with such sensitivity.
लेकिन दूसरे तरफ पे हम हमारे विवेक को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ उसको सुरक्षित रख सकते
हैं. Even in our speech, we must have spoken literary good words.
और हमारे बातचीत के अंदर हम एक अच्छे भले उपयोग शब्दों का कर सकते हैं.
But Holy Spirit can speak to why that tone or the motive behind those words spoken.
लेकिन पवित्र आत्मा हमें यह स्मरण दिला सकता है कि क्यों हमें हमारे बातचीत के अंदर हमारी चीजों के अंदर इस प्रकार के शब्दों का या इस्तेमाल करना है.
So when you are working in the area God has revealed to us, God will reveal us further.
और परमेश्वर ने जो आपके जीवन के अंदर चीजों को रिवील किया उसमें हम जब कार्य करते हैं तो परमेश्वर और आगे आपके जीवन में वो चीजों को बताएगा.
Again, like the example of ice, we know 1/10 of ice floating in water is only 1/10 is in the surface. 1/9 is 9 out of 10 is hidden.
और जैसे हमने उस बर्फ का उदाहरण देखा था कि बर्फ का जो ऊपरी भाग जो होता है उसका 10% ही हम देख पाते हैं, 90% उसका भाग पानी के अंदर तैरता है.
If we chop off that visible portion of the ice from hidden, it will further float up.
और जैसे ऊपर जो दिखने वाला बर्फ है उसको हम काट देते हैं तो नीचे से जो नीचे का भाग और ऊपर आ जाता है.
In the same way, if we are dealing faithfully those things which God has revealed to us, if we work in that area, God will show us further what was it.
और विश्वासयोग्यता के साथ परमेश्वर ने जो बातें आप पर बताई है कि इसके साथ आपको व्यवहार करना है, आप उसके साथ करते हैं, उसके बाद परमेश्वर और आगे आपको बताएगा किन चीजों के ऊपर आपको व्यवहार करना है.
That is how we make progress in Christian life.
और इसी प्रकार मसीह जीवन के अंदर हम प्रगति करते हैं.
We can all start those of family, we can start right in our family.
और जो परिवार वाले अपने परिवार के अंदर इसकी शुरुआत सबसे पहले कर सकते हैं.
Dealings with the husband and wife.
और पति पत्नी के संबंध में.
Our children.
और बच्चों के बारे में.
We can always see, Lord, I want to be like you in our behavior and in our conduct.
और प्रभु से हम कह सकते हैं, प्रभु हमारे स्वभाव के अंदर, हमारे चाल चलन के अंदर हम आपके समान बनना चाहते हैं.
Somebody said, no, you can ask, you know, how long you can look at the eyes of your wife.
और किसी ने ऐसे कहा था कि आप कितनी देर तक अपनी पत्नी की आंखों में देख सकते हैं.
If you have a good conscience, if you have a good relationship, you can look at your wife's eyes straight.
और यदि आपके पास अच्छा विवेक है, आपने अच्छी तरह से व्यवहार किया, तो आप उनकी आंखों में एकदम सीधी रीति से देख पाओगे.
But if you are playing fool around and you spoken, you hurt her and you behave as if nothing has happened, you will not have the courage to look at her eyes.
और अगर आपने उसके साथ मूर्खता की है या उसको ठीक तरह से उसके व्यवहार नहीं किया, क्रोध किया है जैसे कुछ हुआ नहीं, आप सीधी रीति से उनकी आंख में नहीं देख पाएंगे.
It applies even here also, and we can look and we can ask ourselves, how to which is there any brother or sister I have a difficulty look at his eyes.
और हम अपने आप को यहाँ संगति में पूछ सकते हैं, ऐसा कोई भाई है जिसकी आंखों में आंखें देखकर मैं बात नहीं कर पाता हूँ.
I try to avoid his looking at his eyes.
और कई बार मैं उसकी आंखों में देखने के लिए अवॉइड करता हूँ.
That's an indication something wrong inside.
और ये चिन्ह है कि मेरे भीतर कुछ गलत है.
I may be harboring some bitterness.
और कुछ मैं कड़वाहट उस भाई के प्रति मेरे हृदय में रख
रहा हूँ. Some complaint, some unforgiveness.
और कुछ ऐसी शिकायत है या माफी नहीं करने का स्वभाव मेरे अंदर है.
May God really help us.
परमेश्वर सच में हमारी सहायता करे.
To work in those areas and never be satisfied with a lower level of Christian life.
और उन क्षेत्रों के अंदर हम कार्य कर सके और कभी भी मसीह जीवन के निचले स्तर में हम संतुष्ट न रहे.
We read in 1 Corinthians chapter 11.
पहला कुरिन्थी 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं.
In regard to the Lord's Supper.
और प्रभु मेज के बारे में.
Paul is saying that 1 Corinthians chapter 11 verse 23.
पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 23 वचन से.
For I received from the Lord that which I delivered to you.
ये बात मुझे प्रभु से मिली और मैंने तुम्हें तुम्हारे तक पहुंचाई दी है.
So here Paul is telling things what he received from the Lord.
और पौलुस ये बातें बता रहा है जो उसने परमेश्वर से प्राप्त की है.
It's not his bright ideas.
और ये कोई अपने कोई चतुर विचार वो नहीं बता रहा है.
So that is important, something which he received through the Holy Spirit from the Lord and which he is passing on to us.
और कुछ ऐसी चीजें जो उसने पवित्र आत्मा प्रभु से पाई है और वो अब लोगों को पहुंचा रहा है.
So the meaning of the Lord's Supper is explained in that passage.
और इस वचन के भाग के अंदर प्रभु भोज का अर्थ समझाया गया है.
We participate in the Lord's Supper basically in remembrance of Jesus.
हम प्रभु मेज में इसलिए भाग लेते हैं क्योंकि हम उस प्रभु यीशु मसीह में हम उसको स्मरण करते.
In remembrance of Jesus' death on Calvary and his resurrection.
और यीशु मसीह का मृत्यु जो कलवरी क्रूस पर हुआ उसका पुनरुत्थान को हम स्मरण करते हैं.
So verse 26 we read, 1 Corinthians 11:26. As often as you eat this bread and drink this cup, we proclaim the Lord's death until he comes.
क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और कटोरों में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो.
So there in this passage there is one important thing written.
और इस वचन के भाग के अंदर मुख्य बात इस प्रकार लिखी है.
There is a caution or a warning.
और यहाँ पे एक 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 warning है, एक चेतावनी यहाँ पे लिखी गई है.
In a good way.
एक अच्छी रीति से.
Do not participate in the Lord's supper in an unworthy manner.
और जो अनुचित रीति से प्रभु की रोटी या कटोरे में से न पिए.
So we can participate in the Lord's supper in a worthy manner, in an unworthy manner.
इसलिए प्रभु के मेज के अंदर हम योग्य रीति से या अयोग्य रीति से भी भाग ले सकते हैं.
See, for example, no, simple, no, when Jesus the initial the first Lord's supper along with the 12 disciples.
और जैसे यीशु मसीह ने पहला प्रभु भोज किया उसके 12 शिष्यों के साथ.
Bible says that Jesus longed for that time of fellowship and that celebration.
और यीशु मसीह उस चीज की राह देख रहा था कि वो अपने लोगों के साथ संगति करे.
And so also all the disciples except one.
लेकिन वहाँ पे और भी सारे शिष्यों के भी यही चाहत थी लेकिन एक शिष्य के नहीं.
So in the midst of that 12 disciples there was one person.
और उन 12 शिष्यों के बीच में भी एक ऐसा शिष्य था.
Who was waiting, Judas, you know, waiting an opportunity. What I can get out of it.
और वो यहूदा था, वो राह देख रहा था कि मुझे कभी कुछ क्या मिल सकता है.
He was filled with the wrong attitudes.
और उसके अंदर बहुत ही गलत स्वभाव से वो भरा हुआ था.
A spirit of sacrifice was not in him.
और एक बलिदान की जो भावना है आत्मा उसके अंदर नहीं
थी. The only thing he looked for what I can get out of this.
और केवल एक ही चीज को देख रहा था कि इन सारी बातों के द्वारा मुझे क्या मिल सकता है.
Many Christian fellowship, many people come with that at what I can get it.
और मसीह संगति, बहुत सारी मसीह संगति में लोग इस स्वभाव के साथ आते हैं कि मुझे क्या मिल सकता है.
Not what I can give or what I can sacrifice.
और ये स्वभाव से नहीं कि मैं क्या दे सकता हूँ, किस चीज में बलिदान कर सकता हूँ, ऐसा नहीं.
So Judas was sitting there looking for an opportunity, what I can get out of.
और यहूदा इस मौके के साथ यहाँ बैठा है सोचते हुए कि मुझे क्या मिल सकता है.
So that led him to the extent of earning some money by betraying Jesus.
और इस स्वभाव के कारण यीशु मसीह को उसको पकड़वाने के द्वारा कुछ पैसा कमाने तक उसको वो लेकर गया.
He also participated in the Lord's Supper.
और प्रभु भोज के अंदर उसने यहाँ पे उसने भाग लिया.
So Bible encourages. Participate in the Lord's Supper in a worthy manner.
और प्रभु का वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि उचित रीति से हम प्रभु के भोज में भाग लें.
There is an unspeakable blessing in participating in the Lord's Supper in a worthy manner.
और योग्य रीति से प्रभु के मेज में भाग लेने में एक अद्भुत आशीष है.
Actually, Bible speaks that those who are participating in the church, Corinthian church, in an unworthy manner, some of them became sick, some of them died. And many things happen.
और कुरिन्थ यहाँ पे जैसे वचन का भाग लेते हैं, कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर बहुत अनुचित रूप से जब उन्होंने भाग लिया बहुत सारे बीमार हो गए, बहुत सारे मर भी गए.
But when you participate in a worthy manner, the opposite applies.
लेकिन जब हम योग्य रीति से इस मेज में भाग लेते हैं तो इसके विपरीत हमारे साथ होता है.
It is for all kind of blessing and health and everything.
और हर प्रकार की आशीष और एक स्वास्थ्य वो लेकर आता है.
And so what does it mean? Does it mean that only perfect people can participate in the Lord's Supper?
और क्या इसका मतलब ये है कि केवल सिद्ध लोग ही प्रभु के भोज में भाग ले सकते हैं?
Or only the sinless people can participate in the Lord's Supper?
और क्या बिना पाप के जो लोग हैं वही प्रभु के मेज में भाग ले सकते हैं?
That is not the meaning. Honest people.
और ये इसका मतलब नहीं लेकिन ईमानदार लोग.
And this passage, if you read yourself, you can find several a particular word is repeated.
और बार बार एक एक जो शब्द है उसको बार बार दोहराया गया है इस भाग के अंदर.
One is examine yourself.
पहली जो चीज है कि अपने आप को जांचे.
So whichever stage we are, examine yourself, honest yourself, honest to God.
और किसी भी स्तर पर आप अपने आप को जांचे ईमानदारी के साथ.
Look for what are the areas, where is your life now?
और कौन कहां आपका जीवन है उन क्षेत्रों को देखें और कहां पाए जाते हो.
Are you on the way of living a life in a worthy manner?
क्या आप उचित वो जीवन जीने के उस राह के अंदर आपका जीवन पाया जाता है.
How is my relationship with the Christ?
और यीशु मसीह के साथ मेरा संबंध कैसा है.
Is he Lord in my every aspect of my life?
और मेरे जीवन के क्या सारे क्षेत्रों के अंदर यीशु मसीह प्रभु है.
How is my relation to one another?
और मेरा संबंध लोगों के साथ कैसा है.
Do I find it very hard to forgive others?
क्या लोगों को माफ करने में मुझे कठिनाई होती है.
Is there any brother or sister sitting right here with whom I don't have a speaking in relationship. I am not free. I am not in talking terms.
और क्या ऐसे कोई भाई या बहन है जिसके साथ मैं बोलचाल की करने की अवस्था के अंदर आज नहीं हूँ?
And we are not interested in sorting out that matter.
और हमारे अंदर कोई रुचि नहीं कि उस बात को ठीक करें.
You know, Jesus told that when those who are coming to offer sacrifice, God is telling him, I'll accept your sacrifice. First, go and sort out your problem with your brother. Then come and offer the sacrifice. Then I'll receive.
और जब यीशु मसीह ने कहा कि जब लोग बलिदान देने के लिए आते थे, पर यीशु मसीह ने कहा कि पहले जाकर अपने भाई के साथ उस चीज को ठीक कर, बाद में आकर उस बलिदान को चढ़ाना, तब मैं उसे ग्रहण करूंगा.
So you can see God's priority.
हम यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह की प्राथमिकताओं को देख सकते हैं.
It's not that God will not accept our sacrifice.
और ये नहीं कि परमेश्वर हमारी जो बलिदान को ग्रहण नहीं करेगा, ऐसा नहीं.
But if you remember that there is my brother sitting here, he has something against, I have not sorted. I avoided him. I did not sort out the problem. I did not give forgiveness. I did not ask forgiveness.
लेकिन यीशु मसीह याद करेगा कि उस बलिदान से पहले उस भाई को माफ नहीं किया, उसके संबंध के अंदर हम उसको माफ नहीं कर पाए, ठीक तरह से बर्ताव नहीं किया है.
So God is still there. First you go and sort out that, then come.
और यीशु मसीह कहते हैं कि पहले उस चीज को जाकर ठीक करो, फिर यहाँ पर आओ.
So that priority we always have to keep in our heart.
और हमेशा हमारे हृदय में उस प्राथमिकता को हमको लेकर चलना है.
Our relation with God is very important.
हमारा संबंध जो परमेश्वर के साथ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है.
And out of that we should translate into our relation to one another.
और उसी संबंध के साथ साथ हमारे जो संबंध एक दूसरे के साथ होने चाहिए.
So we have to sort out things. Especially if there are issues with each other.
या एक दूसरे के साथ ऐसी कोई भी तकलीफ है तो हमें उसको ठीक करना है सबसे पहले.
That's why the same passage says that the word judge yourself is said.
और जैसे इस वचन के भाग में लिखा है कि अपने आप का न्याय करो.
So each of us is supposed to examine myself.
सबसे पहले अपने आप को जांचना है.
I need to judge myself.
मेरा खुद का न्याय करना है.
When I have a problem with my brother, is it appropriate for me to participate in breaking of bread?
और जब मेरे भाई के साथ मेरा कोई तकलीफ है तो क्या सच में मैं प्रभु मेज में भाग लेना उचित है?
Why don't I call that brother outside right now and ask his forgiveness?
और क्यों ना मैं उस भाई को अभी बाहर बुला के उससे माफी मांग सकता हूँ?
Why are we taking these things lightly?
और हम क्यों पाप को गंभीरता से नहीं लेते हैं?
So this thing God is very important.
और ये बात बहुत ही मुख्य बात है.
And you know, fellowship also always we used to have this thought in my heart.
और संगति के बारे में ये विचार हमेशा मेरे मन में रहता है.
We should be known for our fellowship with each other.
और हमें एक दूसरे के साथ संगति करने से जाना चाहिए.
You know, very easy to understand. My fellowship with God is right. Anybody can say that.
और बहुत बड़ी आसानी से लोग कह सकते कि मेरा संबंध परमेश्वर के साथ ठीक
है. No doubt, that is the most important thing.
और बहुत ही ये महत्वपूर्ण बात जरूर है.
But we encourage with all emphasis, everyone, we need to pursue a good, cordial, loving relationship to one another.
लेकिन इसके साथ साथ हम प्रोत्साहन करते कि एक दूसरे के साथ भी हम बहुत ही प्रेम और भक्तिमय संबंध रख सकते हैं.
Even if you don't participate in the breaking of bread today, that is fine. Postpone it, but sort out that problem with that brother first.
यदि आप प्रभु भोज में आज भाग नहीं लेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पहले उस मसीह भाई और बहन जो हमारे उसके साथ चीजों को ठीक करें.
Otherwise, participate in Lord's Supper, it has no meaning.
यदि आप इस तरह का प्रभु मेज में भाग लेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है.
It could hurt us, not good for us.
वो हमारे लिए अच्छा नहीं, वो हमको चोट पहुंचाएगा.
So let the priority be very clear.
और ये जो प्राथमिकता बहुत ही साफ रीति हमारे मन में हो.
If we are sitting here right now, if we have a problem with anybody, even not here, we can forgive. Voluntarily forgive that person.
और यदि यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं भी बैठा है जिसके विरोध में आपके मन में कुछ है, आप उस अच्छा से उसको माफ कर सकते हैं.
We need to tell that forgiveness originates from our heart. It's not through our lips.
और हमारे केवल होठों के द्वारा नहीं कहने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारे अंदर से भीतर से वो आता है.
Some people say I forgive you, but they keep on remembering that.
और कई लोग तो अपने होठों से कहते हैं कि मैं माफ करता हूँ, लेकिन पूरे जिंदगी भर उसे याद करते
हैं. That's not real forgiveness at all.
और ये सही माफी नहीं है.
The actual forgiveness happens in our heart.
और सही स्वाभाविक जो माफी हमारे हृदय में पहले होती है.
I choose in my heart to forgive that brother who offended me.
और मैं आज चुनता हूँ जिस व्यक्ति ने मुझे चोट पहुंचाई उसको मैं माफ करता हूँ.
Opportunity, I can say that. That's good.
जब आगे मुझे जब मौका मिलेगा तो मैं उसको कहूंगा.
So I really want to encourage my dear brothers and sisters. Right now you can choose to forgive others.
और प्रिय भाई और बहन, मैं आपको प्रोत्साहित करना, तो अभी इसी समय आप माफ कर सकते हैं.
Forgiving others is not a choice for any of us.
और हमारे लोगों के लिए माफ करना है कोई चुनाव नहीं है.
God has not given as an option if you like to any of us. No.
और परमेश्वर ने हम सबों के लिए माफ करना एक चुनाव के रूप में नहीं दिया है.
Jesus, you know, in the prayer to when Jesus taught disciples to pray, this one part here. just like as we forgive our trespasses, their sins, please forgive us our sins.
और जैसे यीशु मसीह ने लोगों को प्रार्थना करना सिखा, उसने प्रार्थना के भाग में ये कहा कि जैसे हम अपने अपराधियों को माफ करते हैं, वैसे ही प्रभु तू हमारे अपराधों को भी माफ कर.
So this extremely important. The forgiveness that we receive is based on the condition that I am willing to forgive others.
और जब परमेश्वर से माफी में इस शर्त के ऊपर ही पाता हूं कि मैं औरों को भी माफ करूं.
So it is not a choice. You want God to forgive you.
और ये कोई चुनाव नहीं है. आप चाहते कि परमेश्वर आपके पापों को माफ करे.
You can receive that forgiveness only if you are joyfully willing to forgive your brother.
आप तभी परमेश्वर से उस पापों की माफी प्राप्त करेंगे तब आनंद के साथ, स्वेच्छा के साथ अपने भाई के अपराधों को माफ करेंगे.
Actually, in Matthew 18, you know that story. It teaches that.
मत्ती 18 के अंदर उस कहानी को हम जानते हैं जो हमको ये सिखाती है.
A person who was so much forgiven.
और जो व्यक्ति जिसका इतना सब कुछ माफ किया गया था.
When and on the way he saw a friend who was owing him a little bit.
और रास्ते में जब वो जा रहा था उसका दोस्त इसको मिला जिसके कम चीजें वो उसके 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 कर्ज था.
He is coming after so much forgiveness. Justly we have God's unreserved forgiveness process.
और ये व्यक्ति जो है इतनी सारी माफी प्राप्त करके है, जैसे मान के देखे कि हमने परमेश्वर की कितनी बड़ी माफी को प्राप्त किया.
But this person on the way he saw his friend and he is not willing to release him.
लेकिन रास्ते में एक व्यक्ति को देखता है उसके दोस्त का, उसका जो छोटा सा कर्ज है उसको माफ करने के लिए उसके अंदर इच्छा नहीं है.
He is not willing to forgive a little bit.
और जो छोटा सा जो है उसको माफ करने की उसके अंदर इच्छा नहीं है.
He catching his neck and say that you have to give it.
और उसके गले को पकड़ को बेलता है कि उसे कहता है कि तुझे वो मुझे देना
है. You know the end of the story.
हम जानते हैं उस कहानी का अंत क्या था.
The master who forgave so much 10,000 talents told him, why you are such a wicked person.
और जो स्वामी को जब ये पता चला उसने कहा कि मैंने तुझे 10,000 जो टैलेंट थे वो माफ करे, तूने क्यों इस प्रकार से बुराई की.
I cancel out what I already forgiven.
और जो भी मैंने तुझे माफ किया था वो सब कुछ मैंने मिटा दिया था.
So what is the meaning of the story? Have you understood?
और क्या आपने इस कहानी के अर्थ को समझा है?
If we are not willing to forgive others,
यदि हम औरों के पाप अपराधों को या औरों को माफ नहीं कर सकते हैं,
what God has already forgiven us, God may cancel out.
तो अगर ऐसा यदि है तो परमेश्वर ने हमारे जो अपराधों को माफ किया है उसको भी परमेश्वर कैंसिल कर सकता है.
I just want to read that one Matthew chapter 18.
मत्ती 18 को मैं पढ़ना चाहता हूँ.
Jesus is concluding after explaining that parable. Jesus telling at the end.
और अंत में यीशु इस दृष्टांत को कहने के बाद इस प्रकार समझाता है.
I encourage you can read home and read this parable. It's a wonderful parable.
इस दृष्टांत को आप घर पे जाके पढ़े, बहुत ही अद्भुत ये दृष्टांत है.
Matthew chapter 18, 21 to 35.
21 से 35 वचन.
And verse 35, Jesus concluded.
35 वचन में यीशु इस प्रकार अंत करता है.
My heavenly Father will also do the same to you if each of you does not forgive his brother from your heart.
इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करो तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम से भी वैसा ही करेगा.
So it is not saying I forgive you. It is forgiveness from the heart.
और केवल मुख से बोलना कि मैं माफ करता हूँ उतना ही नहीं, लेकिन हृदय के साथ हमको माफ करना है.
I don't want to be a theoretician.
और मैं आपको कोई थ्योरी को अनुसरण करने वाले नहीं बनना चाहता.
I've seen my own struggles in my life.
और मैंने अपने जीवन के अंदर इन संघर्षों को देखा
है. It's not easy to forgive others.
और ये आसान नहीं है लोगों को माफ करना.
Especially someone close to us, someone who is responsible about hurt us.
और ये खास करके उन जो हमारे बहुत ही नजदीक होते हैं, जो हमारे ऊपर अधिकारी, उनके द्वारा हमको चोट पहुंचती है.
But
लेकिन
with the help of the Holy Spirit it is possible.
पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा ये संभव है.
God can give each one of us such a clarity of conscience.
और सच में परमेश्वर हमारी ऐसी एक साफ जो विवेक की हमारे समझ दे सकता है.
We can say that there is no one under the sky.
और हम ये कह सकते कि आकाश के नीचे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है.
With whom I have some difficulty in forgiving, my heart I forgive and release them.
और ऐसा कोई भी आकाश के नीचे व्यक्ति नहीं जिसके साथ मुझे कठिनाई होती माफ करने के लिए, मैं उनको माफ करता हूँ, जाने देता हूँ.
By God's grace, I am enjoying that to a great extent.
और प्रभु के अनुग्रह से मैं इसको मैं आनंद ले पा रहा हूँ इस चीज का.
In the earlier days, I had difficulty, especially people who know some elders or somebody above me hurt. It is very hard to forgive.
और खासकर मेरे पहले के दिनों के अंदर जो मेरे ऊपर जो प्राचीन है उनके द्वारा मुझे चोट पहुंचती थी, बहुत ही कठिनाई होती थी माफ करने के लिए.
But forgiving them is not a choice to me. I have to forgive them.
और उनको माफ करना मेरे लिए कोई चुनाव नहीं, मुझे उनको माफ करना ही है.
But when I don't see strength in myself, I have to cry to God and God water will give grace to each one of us without exemption.
और जो माफ करने के अंदर मेरे अंदर ताकत नहीं, मैं परमेश्वर से मांगता हूँ, परमेश्वर सच में मुझे देता है उस चीज को करने के लिए.
Everyone without exemption, whatever may the harshest thing they have done to us.
और कितनी भी कठोर चीज लोगों ने हमारे विरोध में की, हम उनको माफ कर सकते हैं तभी.
And it is not just saying that. Brother, I have forgiven. We can do that from the depth of our heart with the meaning.
और केवल हमारे मुख से हम नहीं कहेंगे प्रभु भाई मैं तुमको माफ करता हूँ इतना ही, लेकिन हमारे हृदय की गहराई से हम उसको अर्थ के साथ करेंगे.
So that forgiving others and liberating others is part of our Christian development and growth.
और मसीह जीवन का प्रगति का यह भाग है कि हम किसी को लोगों को माफ करें और उनको आगे बढ़ने दें.
You know, children who say that I'm cutty with you.
और जैसे लोग बच्चे जो कहते हैं कि मैं कट्टी तुम्हारे साथ कर रहा
हूँ. Unwillingness to forgive others is a it shows our we are still living in the you know Christian children now children what can be said about that
aur is prakar ka ek is prakar ka bachche masi ke bachchepan mein hum log jeevan jee rahe hain
saying that I will not talk to that brother
aur main us bhai se baat nahi karunga
what does shown I am still a child
aur ye kya batata hai ki hum abhi bhi ek bachche ke saman hain
admitted accepted before god
aur parmeshwar ke samne usko maan le kabul kare
when you honest god can lift us up
aur jab hum usko sach mein kabul karenge imandari se kabul karenge parmeshwar humko uthayega
may god really help us
परमेश्वर हमारी सहायता करे
एंड वी विल प्रे
प्रार्थना करेंगे
फादर वी थैंक यू फॉर दिस प्रिविलेज
पिता हम धन्यवाद करते हैं सौभाग्य के लिए
थैंक यू लॉर्ड फॉर बीइंग सो काइंड एंड कंपैशनेट टू अस
प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए और तरस के लिए प्रभु
थैंक यू लॉर्ड फॉर फॉरगिविंग अस अनस्पीकेबल नंबर एंड सीवियरिटी ऑफ सिंस इन आवर लाइफ
प्रभु हमारे कितने अधिक पापों के लिए आपने माफ किए हैं उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं
थैंक यू लॉर्ड फॉर डिलीवरिंग अस फ्रॉम ऑल सिन एंड शेम लॉर्ड
प्रभु हर एक पाप और शर्मिंदगी से प्रभु आपने हमें छुटकारा दिया हम धन्यवाद करते हैं
एंड यू डोंट रिमेंबर देम एनीमोर
प्रभु आप अब उन्हें आप स्मरण नहीं करते हैं
थैंक यू लॉर्ड फॉर द पावर ऑफ फॉरगिवनेस इन आवर लाइफ
प्रभु उस माफी का सामर्थ्य जो आपने हमारे जीवन में दिया हम धन्यवाद करते
हैं लॉर्ड इट्स सच ग्रेटिट्यूड टू रिसीव इट एंड वी वांट टू शो द सेम स्पिरिट ऑफ फॉरगिवनेस टू एवरीवन एल्स
प्रभु हम धन्यवाद के साथ उस माफी को ग्रहण करते हैं और प्रभु उसी को हम प्रभु औरों के साथ बांटना चाहते हैं
लॉर्ड वी चूज टू फॉरगिव एवरीवन हु हैज हर्ट अस और टेकन एडवांटेज ऑफ
और प्रभु जितने लोगों ने हमको चोट पहुंचाई हमारा फायदा उठाने की कोशिश की है प्रभु उन हर एक व्यक्ति को हम प्रभु माफ करते हैं
एंड वी वांट टू रिलीज एवरीवन लॉर्ड
प्रभु हर एक को हम आजाद करते हैं
वेयर द स्पिरिट ऑफ गॉड इज देयर इज लिबर्टी
प्रभु जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है
थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस लिबर्टी थैंक यू फॉर सेटिंग अस फ्री लॉर्ड
धन्यवाद प्रभु इस आजादी के लिए हमें आजाद करने के लिए
एंड थैंक यू फॉर दिस प्रिविलेज टू पार्टिसिपेट इन द लॉर्ड्स सपर
प्रभु मेज में भाग लेने का सौभाग्य जो आपने दिया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं
थैंक यू लॉर्ड फॉर योर वर्क ऑन कैलवरी
धन्यवाद प्रभु उस कलवरी क्रूस पर जो आपने कार्य हमारे लिए किया
यू डाइड एंड यू आर रिसरेक्टेड लॉर्ड
प्रभु आप हमारे लिए मारे गए और प्रभु हमारे लिए पुनरुत्थान पाए
एंड थैंक यू फॉर द प्रॉमिस टू गिव अस अ रिसरेक्टेड लाइफ
और धन्यवाद प्रभु आपके वायदे के लिए जो प्रभु एक पुनरुत्थान का जीवन हमको देने के लिए आपने कहा
वी प्रे दैट यू कंटिन्यू टू ब्लेस ईच वन ऑफ अस लॉर्ड
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हम सबों में से प्रत्येक को प्रभु आप आशीष दे
आमेन
आमेन